सूरत अहजाब, अहजाब जो है ये मदनी सूरत है, इसके 9 रुकू और 73 आयात हैं। अल्फाजो कलमात की तादाद 1,210 है और हुरूफ हैं 5,909। इसका नाम जो है आयत 20 के फिक्रे से लिया गया है, यह सबून अल अहजाब अलम यजहबू, अहजाब हिज की जमा है और ग्रोह जमात उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत के जो मजामीन हैं इसमें तीन अहम वाकयात जो है उसे उसका उनका जिक्र किया गया है। एक है गजवा अहजाब जो शवाल 5 हिजरी में पेश आया, दूसरा गजवा बनू कुरैजा ये जुल्कदा 5 हिजरी में पेश आया, तीसरे हजरत जैनब रजी अल्लाह अन्हो से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो उसी साल जुल्कदा में जो है वो वाकया हुआ। तो वैसे तो और बहुत से छोटे छोटे मजामीन इसके अंदर हैं लेकिन तीन अहम वाकयात जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। अच्छा, इसका इस सूरत का शाने नजूल क्या है, ये सूरत क्यों नाजिल हुई? इस सूरत के नाजिल होने के बारे में चंद रवायात हैं। नंबर एक, के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ फरमा हुए तो मदीना के आसपास कबाइल रहते थे, और आपको पता है मदीना के अंदर कौन से यहूदी कबाइल कितने रहते थे? तीन थे, और उन तीनों के नाम थे बनू कुरैजा, बनू नदीर और बनू कैनुका। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और ये कोशिश थी कि किसी तरह ये यहूदियों के कबीले मुसलमान हो जाएं, और इत्तफाकन कुछ यहूदी लोग जो थे वो आपकी खिदमत में भी आने लगे, और मुनाफिकाना तौर पर इन्होंने अपने आप को मुसलमान जो था वो कहना शुरू किया, लेकिन दिल में इनके ईमान था नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गनीमत समझा कि चलो ये आने तो लगे हैं, और आप क्या सोचते थे कि इस तरह लोग ये मुसलमान हो जाएंगे तो फिर इनके कबाइल में दावत देना आसान हो जाएगा, इसलिए आप इन लोगों के साथ खास जैसे हुस्ने सुलूक करते थे, अच्छा मामला करते, और इनके छोटे बड़े जितने लोग आते थे इनका आप इकराम करते, इनकी इज्जत करते थे, और अगर कोई इनसे गलती भी होती तो आप इनकी जो गलतियां थी उनसे जो थे वो चशमपोशी करते दीनी मसलहत की बुनियाद पर। वजह क्या थी? आप चाहते थे कि हो सकता है इस तरह ये लोग जो हैं वो मुसलमान हो जाएं। कहते हैं इस वाके पर सूरत अहजाब की इब्तदाई आयतें नाजिल हुई, आप इनकी गलतियों पे जो चशमपोशी करते थे ना, तो इसलिए सूरत अहजाब की जो अहजाब की इब्तदाई आयतें हैं ना नाजिल हुई। एक और वाकया भी हमें पता चलता है, ये इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि हिजरत के बाद कुफारे मक्का में से वलीद बिन मुगीरा, शैबा इब्ने रबिया ये मदीना आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पेशकश रखी कि हम सब कुरैश जो हैं, मक्का के जो कुरैश हैं, आधे माल आपको दे देंगे अगर आप अपने दावे को छोड़ दें, और मदीना के मुनाफिकीन और यहूद ने आपको ये धमकी दी कि अगर आपने अपना दावा और दावत से रुजू ना किया तो हम आपको कत्ल कर देंगे। कहते हैं इस पर ये आयतें नाजिल हुई, और आपका दावा क्या था? आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, और कुरान मजीद की दावत जो आप पेश कर रहे थे, तौहीद की दावत। तीसरा भी एक वाकया पता चलता है, और वो क्या है कि जैसे अबू सुफियान, इकरमा इब्ने अभी इब्ने जोहल जो था अबू जहल का जो बेटा इकरमा, इकरमा रजी अल्लाह, और इसी तरह अबुल आवर, कहते हैं कि सुलह हुदैबिया का जो जमाना था, जो वाकया हुदैबिया का, तो कुफारे मक्का और रसूल अल्लाह के मुबैन तो वायदा हो चुका था कि अब जंग नहीं होगी, तो ये जो लोग थे ना ये आपके पास आए और रसूल अल्लाह से कहा कि आप हमारे माबूदों की अगर बुराई से जिक्र करना इनका छोड़ दें और सिर्फ इतना कह दें कि ये भी शिफात करेंगे और नफा पहुंचाएंगे तो हम आपको और आपके रब को छोड़ देंगे। क्या मतलब कि फिर हम आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, समझ आई? आप हमारे بتوں کے متعلق اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ باتیں رسول اللہ اور مسلمانوں کو سخت ناگوار گزری. مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ بھی کیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا، اس پر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو گئیں. تو بہرحال مختلف روایات ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی تضاد نہیں ہے، کوئی ایک واقعہ یا یہ سب واقعات جو ہیں وہ سورت عذاب کے نازل ہونے کا سبب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ سورت عذاب جو ہے وہ کیوں نازل ہوئی. اللہ رب العزت جو ہیں، آپ دیکھیے کہ سورت عذاب کا انداز اس کے نازل ہونے کا بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی بہترین ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں اس طرح سے اس میں جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. کیا فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں کہیں آپ کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا گیا، جیسے دوسرے انبیاء ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، بار بار آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جہاں بھی مخاطب کیا گیا وہ کسی لقب نبی سے، رسول سے مخاطب کیا گیا ہے. صرف چار موقع جن میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان میں آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ضروری تھا، وہ چار جگہ ایسی ہیں. تو یہاں پر یا ایھا النبی، اے نبی، تو نبی کیوں آپ کو کہا گیا؟ اصل میں یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. اے نبی، تو آپ کا مقام نبوت کا مقام ہے. آپ پیچھے پڑ چکی ہیں نا کہ نبی کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بلند مقام پر ہوتا ہے، اور نبی کے اندر یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ خبریں بتانے والا. تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ خبریں بتانے والے ہیں. اے نبی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر دو حکم دیے گئے، دو حکم دیے گئے. پہلا حکم کیا ہے؟ ولا تطیع الکافرین. پہلا حکم ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر. اور دوسرا کیا ہے؟ ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقین جو ہیں وہ ان کی اطاعت نہ کیجئے، ان کا کہنا نہ مانیے. اب آپ دیکھیے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو حکم دیے گئے، تو پہلا کیا ہے؟ اثبات ہے. پہلا کیا ہے؟ مثبت ہے کہ ایک اللہ سے آپ ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. اور دوسرا حکم جو ہے وہ منفی سے ہے، نفی ہے نا، ولا تطع، اور نہ کہنا مان اور نہ اطاعت کر، کافروں کی بھی اور منافقین کی بھی، ان کی اطاعت نہ کرنا. تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیوں کہا کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں؟ کیونکہ آپ تو نبی تھے، اور انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء تو گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انبیاء کی نگرانی کرتے ہیں اور انبیاء کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کر. اس کے کیا معنی ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ڈر اختیار کر. تو بات جو شروع کی گئی تو آغاز ہی سے کیا گیا اتق اللہ. اتق اللہ تو کہتے ہیں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا اور سنایا امت کو گیا، کیونکہ آپ تو معصوم تھے اور آپ اللہ کے جو احکامات تھے اس کی نافرمانی تو نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر مخاطب کرنے کے بعد یہ یاد دلایا कि आपको परवाह सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ आपके दिल के अंदर होना चाहिए, और काफिर और जो मुनाफिक हैं इनकी आप कोई परवाह ना करें। वला तो तेल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ना काफरों की बात माननी है ना मुनाफिकीन की। जैसे यहूदी मुनाफिक बनकर आपकी महफिलों में आते थे, या फिर काफिर आकर आपसे साज बाज करना चाहते थे कि हमारे बुतों को आप कुछ ना कहें, या ये कि कुछ हमारी मान लें और कुछ हम आपकी जो है वो मान लेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात बताई गई वो क्या है कि काफिर हैं या मुनाफिक जो भी लोग हैं, इनकी मुखालफतें, इनकी मुनाफिकाना रविश जो है, इनसे बिल्कुल बेपरवाह होकर आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक जो है वो आप पहुंचाइए। इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरिए। तो नबी को बताया जा रहा है कि नबी के सामने जो मकाम होना चाहिए, नबी के सामने जिस चीज की अहमियत होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद अल्लाह से डरने वाले थे, लेकिन फिर जो बात कही गई तो ताकीद का अंदाज है। और दूसरी बात क्या कि उम्मत को, मुसलमानों को सिखाना मकसूद है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अवाम जो है वो लीडर और रहनुमा को जो है वो चाहती है कि थोड़ी सी तो रियायत पैदा करें ना, थोड़ी सी तो जो है वो गुंजाइश पैदा करें, या थोड़ा सा आपस में मिलजुल कर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। तो असल बात क्या है कि आप देखिए सूरत मायदा आयत 67 में आप ये बात पढ़ चुकी हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल तुम अच्छी तरह लोगों को वो चीज पहुंचा दो जो तुम पर तुम्हारे रब की जानिब से जो है वो नाजिल की गई है। तो जो अमल की बात बताई गई वो क्या है कि डरने के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, डरो तो अल्लाह से डरो। या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह, ए नबी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। आप सोचे तो सही इस बात पे, आप जरा गौर तो करें इस बात पर कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरना। नबी को अगर अल्लाह ताला ये कहते हैं तो मेरा और आपका क्या हाल है ना। ईमान लाने वाला होता ही वो है जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह का तकवा जो है वो इख्तियार करता है। लेकिन फिर ये बात कहना कि ए नबी अल्लाह से डरते रहना, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। इसीलिए आप देख लें निकाह के मौके पर तीन आयतें खुतबा निकाह में पढ़ी जाती हैं, उन तीनों में इत्तकिल्लाह तकवा की बात है। तो शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुजर सकती, वो सुकून सकीनत मुद्दत रहमत नहीं बन सकती जब तक कि तकवा ना हो। और इसके अलावा खानदान के जितने झगड़े और मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते जब तक कि तकवा ना हो। ना हुकूक अल्लाह अदा हो सकते हैं ना हुकूक अल्लाह, जब तक इंसान की जिंदगी में तकवा ना हो। तो तकवा क्या है, मेरी और आपकी जिंदगी के मसाइल से निकालने की शाह कलीद है। तकवा मेरी और आपके, मेरे और आपके अमलों का हुसन है। तकवा जिंदगी में एक तवाजुन पैदा करता है। तकवा मेरे और आपके मसाइल का हल है। तकवा अल्लाह का डर, ये जन्नत के रास्ते का जीना है, ये जन्नत के रास्ते का निशान है। जिस शख्स की जिंदगी में तकवा आ गया, आप समझ लिए कि उसकी जिंदगी में बहार आ गई, उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी आखरत भी संवर गई। और आज डॉलर जेवर कपड़े घर गाड़ी इसकी कमी नहीं है, लेकिन अफसोस अगर कमी है मुसलमानों की जिंदगी में इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी, तकवा की कमी है। बड़ी खूबसूरत सूरत है, आगाज में ही नबी को कहा जा रहा है कि तकवा इख्तियार कर, तो उम्मत मुस्लिमा को बदरजे उला तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है कि ऐ मुसलमानों तकवा इख्तियार करो इनफरादी जिंदगी में भी और इज्तमाही जिंदगी में भी, ये तमाम मसाइल का हल है। और दूसरा हुक्म दिया गया, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और अतात न कर। वला तुति तो ए वो ऐन, तौन का होता है कि जैसे खुशी से कोई काम करना ना, तौन करना, आप पढ़ चुके पीछे तौहन व करहन, तौहन व करहन के चाहना और फिर ना चाहना। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है गोया के फिर कहा जा रहा है, इत्ता किल्ला के अंदर भी ये बात शामिल है कि काफिर और मुनाफिकीन का कहना ना मानना, ये जो तेरी महफिलों में आते हैं, ये जो तुम्हें मशवरे देते हैं, ये जो साजिशें करते हैं और ये जो आपके इर्द गिर्द मसाइल का अंबार खड़ा कर देते हैं, तो इनका कहना ना मानना, इनसे मरूब ना होना, इनसे डरना मत, अल्लाह से डरना, किसी से ना डरना, ना यहूदियों से, ना नसारा से, ना मुशरिकीन से, किसी से भी ना डरना। लेकिन दोबारा का वला तो तेल काफिरी नवल मुनाफिकीन वाजे करके, तो मुफस्सरीन जो है वो क्या कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो अल्लाह के रसूल थे, वो तो अल्लाह ही का कहना मानने वाले थे, अल्लाह ताला को रसूल अल्लाह से कोई अंदेशा नहीं था कि आप काफिर और मुनाफिकीन जो हैं इनकी बातों से मरूब हो जाएंगे या मुतासिर हो जाएंगे। फिर क्यों कहा दूसरी दफा? तो दरअसल कहते हैं कि मुखालफीन को तंबीह की गई है, मुखालफीन को डराया गया है कि ये यहूदो मुशरिकीन कितना ही जो है वो जोर लगा लें, कितने ही जो है वो फितने खड़े कर लें, लेकिन तुम इनकी बातों पर जरा कान ना धरना, जरा सी इनकी बात ना मानना। आप आगे पढ़ेंगी जो फितनों का जिक्र सूरत अज़ाब में, तो आपको अंदाजा होगा कि इन्होंने कैसे कैसे फितने जो है वो खड़े किए। तो यहाँ पर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाज में ही, शुरू में ही ये बात जो है वो बता दी कि आपने इनका कहना जो है वो नहीं मानना। जो कोई भी मशवरा दे रहे हैं कि दीन में थोड़ा सा आपस में रियायत कर लें, या ये ऐसे मशवरे देते हैं कि जो है वो इनके बुतों को कुछ ना कहा जाए, है ना, और या फिर आपको ये धमकी देते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कुछ भी बात, तो वला तो तेल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ना काफिरों का कहना मानना है ना मुनाफिकीन का। और आप एक बात याद रखें कि काफिर तो सिरे से इनकार करने वाले होते हैं ना, मुनाफिकीन जो हैं जो ईमान लाते हैं और इनकार करते हैं, जो जिनके डबल फेस होते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर तजाद होता है, कंट्राडिक्शन होता है, और मुनाफिकीन ने हमेशा इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये सूरत कौन सी है? मदनी सूरत है। तो मुनाफिकीन का सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई और बहुत से उसके साथी। तो ऐसे तमाम लोग जो है इनका कहना ना माना, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, के बेशक अल्लाह जानता है और अल्लाह जो है वो हकीम है, अलीम भी है और हकीम भी है। तो आप देख लीजिए कि कफार और मुनाफिकीन का इकट्ठा जिक्र करके अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि दोनों की असल एक है, दोनों जो हैं इनका बाहमी रिश्ता है, इनका बाहमी एक ताल्लुक है, ये एक ही इस्लाम दुश्मनी में दोनों मुत्तहिद हैं, एक खुलम खुला मुखालफत करता है और एक जो है वो छुप कर करता है, इस्लाम के अंदर घुसकर मुसलमानों की सफों में घुसकर उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए मुनाफिकीन के बारे में क्या आता है कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह अलीम और हकीम है। दरअसल ये तवक्कुल अल्लाह की दलील है कि जब अल्लाह जो है वो इल्म रखने वाला है और अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी हैं, तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं या इनके जो फजूल मशवरे हैं या ये जो आपस में समझौते की कोशिशें करते हैं, तो आप इनसे बेपरवाह और बेखौफ होकर अपना मिशन अदा करें, तबलीग करें, अल्लाह के अहकामात की तामील करें। क्यों? अल्लाह अलीम और हकीम है। अल्लाह अलीम और हकीम का मतलब क्या है? अल्लाह को अपना वकील बना लें, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ सुनता है, वो सब कुछ जानता है और उसके फैसले हिकमत पर मबनी हैं और वो अपने फैसलों को नाफिज भी करेगा। तो गोया के यहां पर जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि आप जो हैं अल्लाह जो है अल्लाह से ऐसा बेहतरीन ताल्लुक कायम करें, क्योंकि अल्लाह अलीम और हकीम है। बाज़ुकत इंसान उसकी बात मानना चाहता है ना जिसका लगता है फायदा ज्यादा है, कभी दुश्मनों की बात में फायदा ज्यादा नजर आ रहा होता है, और ऐसा नहीं था नऊज़ बिल्लाह के रसूल अल्लाह किसी की बात मानने वाले थे या मानना चाह रहे थे, लेकिन माहौल और फिजा ऐसा बना हुआ था कि आप मदीना में गए हैं, मदनी सूरत है ये, और आप देख लें कि मुनाफिकीन की साजिशें और यहूदियों की बातें, और मक्का यहूदी जो थे वो मक्का के काफिरों से मिलते थे, काफिर मदीना में आते थे और आकर मुख्तलिफ बातें जो थे वो सोचते थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात बताई गई وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رواداری اختیار نہیں کرنی. اللہ زیادہ جانتا ہے مسئلے کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما وتب ما یوحا الیک من ربک. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وتب آ گیا. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اتباع کرنا. اطاعت ہوتا ہے عام کہ کہنا مانا جائے. اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے جو فٹ پرنٹ ہے نا اس کے اوپر چلنا, قدموں کے نشانوں پہ چلنا, پیروی کرنا, کسی کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلنا. تو آپ کیا کہا؟ وَتَّبِ, اور آپ پیروی کیجئے. پہلے وہی بات جو منفی انداز میں کہی گئی تھی اسی بات کو اب مثبت انداز میں کہا جا رہا ہے. پہلے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اب کہا جا رہا ہے کہ جب ان کا کہنا نہیں ماننا تو کس کا کہنا ماننا ہے؟ وَتَّبِ اور کہنا مان اور پیروی کر. کس کی؟ مَا یوحٰی اِلَیْکَ, جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. اس میں وحی متلو اور غیر متلو دونوں آ جاتی ہیں. متلو کون سی وحی ہے؟ جو قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے. غیر متلو کون سی ہے؟ جو حدیث ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پیغام پہنچے, تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام آپ کو مل رہے ہیں آپ ان کی پیروی کیجئے. تو گویا کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو اس پر چلیے. وَتَّبِ مَا يُوحَ إِلَيْكَ, آپ کی طرف, مِن رَبِّكَ, آپ کے رب کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ رب یہاں پہ کوئی اور اللہ کی صفت بھی آ سکتی تھی, رب کی صفت جو ہے وہ آئی ہے. تو یہ کیوں رب کی صفت آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے نا پالنے والا, پالنہار. رب جو ہے جو ایک پانی کی بوند سے, ایک قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے, حقیر سے, نطفے سے. تو جسمانی ضرورتیں جو رب پوری کرتا ہے, وہی رب جو ہے وہ روحانی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو وہی جو ہے اسی رب کی طرف سے آئی ہے جو زندگی میں اور سارے ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. مادے کا, مادی ضرورتیں, جسمانی ضرورتیں, تو انسان جو ہے روح اور مادے کا مرکب ہے. تو روحانی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کیا اور آپ اس وحی کا جو ہے وہ اتباع کریں. اور آپ دیکھ لیں ساری کی ساری بات کا اتباع کرنا ہے, ایک یا دو کا نہیں. جیسے سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک جتنے اللہ کے احکامات ہیں سب کا کہنا ماننا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ بہت سی حدیثیں قدسی جانتی ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے, جو اللہ کا حکم ہے, اللہ کا پیغام ہے, لیکن رسول اللہ نے اس کو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اور آپ نے جو ہے بتایا. اور آپ یہ کہتے تھے کہ حدیث قدسی, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے. تو یہ مطلوب ہے یا غیر مطلوب, آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہاں پر اللہ تعالی کیا بات بتا رہے ہیں کہ اب کافر اور منافقین ہیں وہ آپ کی محفلوں میں آتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, آپ کو مشورے دیتے ہیں, اور آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. تو بات تو وہی کی ماننی ہے, آپ نے اور صحابہ نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہا اللہ کے نبی کو جا رہا ہے اور آخر میں آ گیا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. تعملون کیوں آیا؟ تعملون کیوں نہیں آیا؟ جمع کا صیغہ آ گیا نا, کیونکہ صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہیں. تعملون کہہ کے بتایا کہ صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو میں جو آرڈر دیے گئے ہیں ان کی اطاعت ان تمام صحابہ پر بھی لازم ہے, ان کو بھی کہنا ماننا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ کیونکہ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی تمام مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی حیثیت امت کے وکیل کی سی ہے. دین کے معاملے میں جو رسول اللہ روش اختیار کریں گے مسلمانوں کو بھی وہی روش اختیار کرنی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں رسول اللہ بھی اور آپ کے صحابہ بھی سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کی نظروں میں ہے. اب دیکھیں خبیر خبردار ہے, خوب واقف ہے. وتوکل علی اللہ, اور آپ اللہ پر توکل کیجئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو وکیل بنا لیجئے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ آپ اللہ کو وکیل بنائیے. آپ دیکھیں کہ آپ جب یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں رہ کر تو وکیل کی بات اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ وکیل کون ہے. جی کس کو آپ وکیل بناتے ہیں؟ जिस पर आपको खूब भरोसा होता है मेरा केस अच्छी तरह लड़ेगा, और वो तो जी इतने केस उसने अब तक जीते हैं, हमने तो अपना मुकदमा फलां वकील के सपोर्ट किया, पैसों की कोई परवाह नहीं है, केस इमिग्रेशन का हो, केस कैद से रिहाई का हो, केस जो है वो कोई स्कॉलरशिप लेने का हो, किसी को सू करने का हो, कोई भी मामला हो, या गाड़ी का एक्सीडेंट है तो उसका आप केस कर रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसको वकील बनाते हैं जिसको वकील बनाकर आपको महसूस होता है कि हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। तो कहा फतवक्कल अल्लाह, आप अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, और तवक्कुल जो है इसकी असल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को क्या कहा था? ऊंट को बांध और फिर अल्लाह पर तवक्कल कर, है ना, एक इल्वा तवक्कल, कि पहले ऊंट को रस्सी से बांधा जाए फिर तवक्कल किया जाए। तो इसके मानी क्या हैं कि इंसान होने के नाते जो भी तदाबीर हो सकती हैं वो करने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा किया जाए। अब ये नहीं है कि इंसान किए कराए कुछ नहीं और कहे कि मैंने तो अल्लाह को वकील बना लिया, खुद ही मेरा मसला हल हो जाएगा, नहीं, होशियार रहना है, इनकी जो भी साजिशें हैं, इनके जो भी रवैये हैं, इनसे होशियार रहना है और फिर अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना है। वकफा बिल्लाही वकीला, और अल्लाह ही वकील बनने के लिए काफी है। इसका मतलब यह है अल्लाह इस बात का हकदार है कि उसको वकील बनाया जाए। अल्लाह ताला अपने अकवाल में, अपने अफाल में हकीम है। आप पीछे से लेकर आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक आप देखें, हर बात का दूसरी के साथ जो है एक लिंक है। पहली बात क्या है कि अल्लाह जानता है, उसका इल्म एक मुकम्मल इल्म है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे तहत सुरा तक जानता है। दूसरी बात यह है कि उसके फैसले हिकमत वाले हैं। वकील कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, वकील जो है वो किस तरह से जो है वो मामले को हैंडल करेगा, इस्लाम कैसे एक जिंदा हकीकत बनेगा, कैसे मुसलमानों की हिफाजत होगी, कैसे रसूल अल्लाह की हिफाजत होगी, क्योंकि मदनी जिंदगी बड़ी मुश्किल जिंदगी थी, छोटी सी इस्लामी रियासत, और इर्द गिर्द जो था वो मुश्किलात का के बादल हर वक्त उमड़े रहते थे। तो आपके फैसले अल्लाह ताला के फैसले हिकमत वाले फैसले हैं, हर बात इल्म और हिकमत पर मबनी है। फिर क्या कहा, इन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, वो हर चीज से बाखबर है, कौन कैसे अमल कर रहा है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, मुसलमान डर रहे हैं, परेशान हैं मसाइल से, अल्लाह ताला हर बात पर को से वाकिफ है। तो फिर कह दिया आप तवक्कुल, तो उसको वकील बनाओ जो हालात से बाखबर है, जिसके फैसले हिकमत वाले हैं, और फैसले करने से पहले भी और बाद में भी वो अलीम है, वो अलीम है, वो हकीम है, वो खबीर है, इसलिए वो वकील बनना चाहिए, आपको उसी पर भरोसा करना चाहिए। और वकील जो है वो जात है जिस पर पूरा एतमाद करके अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दिए जाएं। कोई मुश्किलात आएंगी, कोई परेशानियां आएंगी, तो अल्लाह ताला उन मुश्किलात में से तुम्हें निकालेगा। वतवक्कल अल्लाह, काश के मैं और आप भी अल्लाह ताला को अपना वकील बना लें आज की इस जिंदगी में, आज के इस दौर में। देखिएगा अनदेखी राहों से अल्लाह मेरी और आपकी मदद करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आग में छलांग लगाई थी तो क्या पढ़ रहे थे, हसबुनल्लाह व नीमल वकील। ग़ज़वा बदर दुश्मन सर पर था और रसूल अल्लाह रात को रो रो कर क्या दुआ पढ़ रहे थे, हसबुनल्लाह व नीमल वकील। और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हसबुनल्लाहु व नीमल वकील जो थे वो पढ़ रहे थे। तो इससे अमली जिंदगी के लिए हमें क्या उसूल मिलता है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई तंगी का वक्त हो, तो उस वक्त जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और आगे भी आप पढ़ेंगी गजवा एहजाब के बारे में, आप सोचे गजवा एहजाब, सारा कुफर इकट्ठा हो गया था, सारा कुफर इकट्ठा होकर जब आया था तो सबसे पहला कलमा जो आपकी जबाने मुबारक पर आया था वो यही था, हसबुनल्लाहु व नीमल वकील, हसबुनल्लाहु व नीमल वकील। तो ये है मोमिन की जिंदगी का उसवा। یعنی مومن رسول اللہ کی زندگی سے یہ اسوہ لیتا ہے، یہ رہنمائی لیتا ہے کہ وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. جب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ آگے جو واقعات آئیں گے اس سے پہلے تمہید بڑی خوبصورت اللہ نے باندھی ہے، کھڑا کر دیا ہے، مضبوط سہارے کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کا جب کہنا مانیں گے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کریں گے وہی، تو پھر آپ بدنام نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ ختم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ آپ کا وکیل ہے، اللہ آپ کا سہارا ہے. کاش کہ آج کے مسلمان، میں اور آپ، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان تین آیتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اور آپ یقین کریں اس بات پر کہ میرے اور آپ کے تمام شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے. آج امت مسلمہ اسلام پر چلنا نہیں چاہتی، شک ہے، پتہ نہیں اسلام پر چلیں گے تو زمین پہ رہیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں بیٹی کا رشتہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں بیٹے کو جاب ملے گی کہ نہیں، اگر اسلام پر چلتے ہوئے حلال طریقہ اختیار کرتے ہوئے جاب کرنا چاہا تو پھر جاب ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں گھر میں حکومت ملے گی کہ نہیں، خاندان میں لوگ مانیں گے کہ نہیں، پوچھیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں دوست جو ہے وہ کیا کریں گے، پتہ نہیں ہمسائے پوچھیں گے کہ نہیں. تو ایک خوف اور ہراس کی کیفیت میں لوگ مبتلا رہتے ہیں. تو یہاں پر نچوڑ بتا دیا عملوں کا کہ لوگوں اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کا ڈر رکھو، سب کا ڈر ختم کر دو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا کہنا مانو، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، اور اللہ کو ایسا اپنا وکیل بنا لو، اور وہ اللہ جو کسی وقت بھی تمہیں جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. جب اللہ کو وکیل بنا لیا تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس کی ابتدا. اور پھر کیا کہا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی رجل میں، من قلبین دو قلب، فی جوفہ اس کے جوف میں. تو اس آیت کے اندر تین چیزیں اہم ہیں، ایک تو ہے رجل، اور رجل جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. رجل کا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ آدمی کی شان جو ہے اس کی وجہ سے استعمال کیا ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑی ہی شان و شوکت والا ہے. رجل کا لفظ استعمال کیا نا، اور رجل جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بڑا ہی افضل ہے، شان و شوکت والا ہے. تو نہیں بنائے کسی رجل میں، کسی شخص میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے. قلبین دو دل، قلب جو ہے، قلب کہتے ہی اس کو ہے جو دھڑکتا ہے، قلب کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. خون جو ہے آتا ہے پھر صاف ہو کے پھر رگوں کے اندر دوڑتا ہے. آپ دیکھیں ایک لمحے آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ بڑی اداس ہیں، تھوڑے دوسرے لمحے آپ بڑی خوش ہو جاتی ہیں. حال باہر کا موسم نہیں بدلا، بادل ہے، سنو ہے، ابھی آپ خوش تھی، ابھی آپ ناراض ہو گئی، ابھی آپ ایک کام کر رہی ہیں دوسرے لمحے آپ دوسرا کام کرنا کے لیے سوچتی ہیں. تو قلب کیا ہے، حالت کی تبدیلی کو کہتے ہیں، انقلاب بھی اسی سے ہے، حالت بدلتی رہتی ہے. تو قلبین تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قلبین پیدا نہیں کیے. کہاں پہ، فی جوفہ ہی، اس کے سینے میں. جوف کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور جوف جو ہے کسے کہتے ہیں، جوف جو ہے یہ کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، وہ چیز جو کھوکھلی ہوتی ہے، جو خالی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. جوف مثلا ہر چیز کا جو اندرونی حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں جوف، اندرونی حصہ. اور ویسے تو آپ دیکھیں تو بہت سے حصے ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کے، جیسے جوف جو ہے سینے کے لیے یہاں پہ، کہ جوف میں دو دل نہیں رکھے. اب صدر کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا، سینے کے لیے ہے نا. ना, सदर किसी चीज के मरकजी मकाम को कहते हैं, कैपिटल जो अफजल मकाम होता है उसको कहते हैं सदर, लेकिन यहाँ पे जो है वो जौफ, क्योंकि जौफ के अंदर कल्ब होता है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे धड़ के अंदर, तुम्हारे धड़ में जो है वो दो कल्ब नहीं रखे। इसके मानी क्या हैं? दरअसल यहां पर ये एक बात कहकर तीन हकीकतों की तरफ इशारा किया है, तीन हकायक की तरफ इशारा किया है। और पहली बात क्या है कि सब इंसानों का अल्लाह ने एक ही दिल बनाया है, दो दिल नहीं बनाए। मानी क्या है कि एक वक्त में एक शख्स ये नहीं हो सकता कि मोमिन भी हो और काफिर भी हो, मोमिन भी हो और मुनाफिक भी हो। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो एक वक्त में दो काम कर रहा हो, मसलन झूठा भी हो सच्चा भी हो, बदकार भी हो नेकोकार भी हो, उसके अंदर इखलास भी हो और बेखौफी भी हो। एक वक्त में एक आदमी की एक ही हैसियत हो सकती है, या वो होगा मोमिन या वो होगा मुनाफिक, या वो काफिर होगा या वो मुस्लिम होगा। तो गोया के एक शख्स को दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि एक वक्त में एक रजुल एक ही हैसियत रखता है। कितनी खूबसूरत बात की तरफ जो है वो इशारा किया है। तो चूंकि अभी बाद में आप जो वाकयात पढ़ेंगी ना सूरत अहज़ाब में, वहां पे पता चलता है कि लोगों की बातों में बड़ा तजाद था, बड़ा निफाक था, बड़ा कुफर था उनके अंदर, उनकी बातें उनके इरादे उनके जो फिक्रें थी उनमें बड़ा कंट्राडिक्शन था। तो अल्लाह ताला ने क्या बात बताई कि अगर अल्लाह ताला को ये पसंद हो ना कि लोग हाँ भी कहें नहीं भी कहें, ईमान भी लाएं कुफर भी करें, ईमान भी लाएं निफाक में भी मुब्तला हो, तो अल्लाह ताला हमेशा जो है वो हर एक के धड़ में दो दिल रख देते। एक के साथ वो ईमान लाते रहते, दूसरे के साथ वो मुनाफ़त करते रहते। हर शख्स को जो है क्या करते अल्लाह ताला, दो काम करने की तौफीक देते, दो चीजें इंसान के अंदर रख देते। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बात बताते हैं कि अल्लाह की बनाई हुई साख जो है ना वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह की बनाई हुई जो साख है उसके अंदर कंट्राडिक्शन नहीं है, तजाद नहीं है, तनाकुद नहीं है। तो मा जालल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं रखे। तो फिर मैंने आपको कहा कि एक बात में आयत एक में तीन हकीकतें बताई गई। पहली हकीकत तो ये पता चल गई, दूसरी हकीकत क्या है, वमा जाल अज़वाजुकुम अल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम, और अल्लाह ने नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, वमा जाला और नहीं बनाया, अज़वाजुकुम ज़ौज की जमा है, और ये मर्द और औरत शोहर और बीवी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और नहीं बनाया तुम्हारे ज़ौज को क्या। अब यहां पे अज़वाज जो है ये बीवियों के लिए आया है, मर्दों के लिए क्यों नहीं आया, कैसे पता चला, अल्लाह ही आ गया। अगर अल्लाह जीना आता तो पता चलता मर्दों की बात हो रही है, अल्लाह ही आ गया। अल्लाह ही जो है ये इसम मौसूल है, ये अल्लाह ती की जमा है, वो जो यानी वो औरतें उनको अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को नहीं बनाया, अल्लाह ही जिनको तुम तो जाहिर हूं ना तुम जिनसे जिहार करते हो, मिनहुन्ना उनसे, हा हुमा हुम है ना, आप देखिए हु हुमा हुम और हा हुमा हुन्ना, हुन्ना जो है ये मुअन्नस का जमा का सीगा है, जैसे हुम होता है ना तो हुन्ना औरतों के लिए आता है, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, तो मिनहुन्ना वो जिनको तुम जिनसे तुम जिहार करते हो, उम्महातिकुम वो तुम्हारी जो है वो माए हैं। तो अल्लाह ताला यहां पर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माए नहीं बना दिया, वमा जाला अज़वाजुकुम अल्लाई तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, तुम्हारी बीवियों को अल्लाह ने तुम्हारी माए थोड़ी बना दिया तुम्हारा जिहार करने से, तुम्हारा जिहार कहने से, जिहार किसे कहते हैं? जिहार जोए हा अलिफ रा। जिहार ये अरब की एक खास इस्तलाह है। कदीम जमाने में अरब के लोग बीवी से लड़ते हुए कभी ये कह बैठते थे कि अंती अलैया का जहर उम्मी, कि तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माँ की पीठ जैसी है, तू मेरे लिए ऐसी है जैसे कि मेरी माँ। अब ये लोग किसे कहते थे? अपनी माँ को कह देते थे, और जिहार अपनी बीवी को कह देते थे। सही, अरब के लोग क्या करते थे? अपनी बीवी को अपनी माँ कह देते थे, होती वो बीवी थी लेकिन माँ कह देते थे। जोए हा रा किसे कहते हैं? पीठ को कहते हैं ना, तो चीज को उल्टा कर दिया। जहरुन जिहार के बीवी को माँ कह दिया। तो अब जो है आप इसकी तफसील जो है आप आगे पढ़ेंगी कुरान में, जैसे सूरत मजादला है उसमें इसका कानून जो है वो आप तफसील से पढ़ेंगी, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताते हैं कि किस तरह एक औरत जो है वो फरियाद करती है। क्योंकि अरबों के हाँ ये एक रवा, एक नहीं कि एक आदमी ने कहा, जैसे सूरत मजादला में देखें आयत नंबर एक है, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलु का फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउ बसीर। बेशक अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, जो तुझसे अपने शोहर के बारे में मजादला कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। तहावुरा कुमा मुहावरा इन्नल्लाह समीउं बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। और ये कौन सी औरत थी? हजरत खौला। हजरत खौला जो थी इनके शोहर हजरत औस ने उनसे जिहार कर लिया था। क्या मतलब है इसके? बीवी को ये कह दिया था, अंती अलैया का जहर उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। अब जिसको जिहार कह देते थे, जिहार कर लेते थे शोहर, तो उसको तलाक के मानी में समझा जाता था। जब तलाक दी नहीं है, तलाक देने की एक शक्ल थी कि बीवी को कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो गोया कि जिहार का ऐलान कर दिया। ये एक इस्तलाह थी। अब जिहार करने का मतलब क्या था? कि अब तुझे तलाक है, अब मैं तुझसे कोई ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करूंगा। जैसे माँ के साथ ताल्लुक कायम करना हराम है ना, तो मुंह से जिहार करके बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेते थे। हजरत खौला ने जब ये बात सुनी बहुत ज्यादा पशेमान हुई, और रसूल अल्लाह के पास आई और आप खामोश रहे क्योंकि कुरान में कोई हुक्म तो नाजिल नहीं हुआ था, और वो आपसे बहस तकरार करने लगी। तो फिर जो है सूरत मजादला की आयतें नाजिल हो गई, और उसमें जो है मसला जिहार और उसका हुक्म और कफारा जो था वो बता दिया गया। और आप देखें कि एक औरत घर के एक कोने में रसूल अल्लाह से आसमान के नीचे जमीन के ऊपर मजादला कर रही है, अपने खुआवंद की शिकायत कर रही है। और जो शिकायत कर रही है वो शिकायत अल्लाह ने आसमानों के ऊपर सुन ली। और हजरत उमर के बारे में भी आता है ना कि एक दफा रास्ते में आप मदीना में जा रहे थे, आपके साथ सहाबा भी थे, और हजरत खौला आपको मिली और आप से बातें करने लगी, आप खामोशी से बातें सुनते रहे। तो जो सहाबा साथ थे उनको ये बात अच्छी ना लगी कि एक बूढ़ी औरत है और इतना वक्त अमीरुल मोमिनीन का जाया कर दिया, या इतनी देर तक बातें आप इनसे कर रहे हैं और आपसे कहने लगे कि आपने उस बूढ़ी औरत की वजह से इतना वक्त लगा दिया। तो आपने कहा कि ये वो औरत है जिसकी आसमान पर अल्लाह ने बात सुन ली थी, सात आसमान पर, इतनी यानी नीचे ये बात कर रही थी। अल्लाह तो हर वक्त हर जगह है ना, लेकिन अल्लाह ने इनकी बात जो थी वो सुन ली थी। तो दरअसल अब यहां पर जो बात बतानी मकसूद है वो क्या है कि जिस तरह एक सीने के अंदर दो दिल नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह से एक आदमी जो है उसकी बीवी, ऐसा नहीं है कि उसकी बीवी एक वक्त में बीवी है दूसरे वक्त में मां बन जाए। तो गोया के आदमी के कहने से बीवी की हैसियत जो है वो मां की नहीं बन जाती। ये एक गलत जुमला है जो उनको जो है वो अपनी जबान से वो निकाल देते हैं और उनको ये जुमला जो है वो नहीं निकालना चाहिए। तो फिर जो है इसका जो जिहार का कानून जो सूरत मुजादला में नाजिल हुआ तो क्या बात बताई गई, गोया के मर्दों को सजा दी गई। जिहार का कानून जो है उसमें क्या है, ऐसा थोड़ी है कि ये लोग अपने मुंह से जब चाहें बीवी को बीवी बना लें, जब चाहें जिहार कर दें। अल्लाह ताला ने जो है वहां पे बकायदा ये बात बता दी कि ये कौले जूर कहते हैं और जो भी अपनी बीवियों से जिहार करेंगे और अपनी कही हुई बात से रजू करना चाहें कर लें तो उनके जिम्मे क्या है कि एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आजाद करना है और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो 2 महीने के मुसलसल रोजे रखने हैं। शहरैन मुतताबियैन फसियामु शहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल रोजे, और अगर ऐसा भी ना कर सकें किसी के अंदर ये ताकत ना हो तो फैतामु 60 मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और आप देख लें आज भी मुसलमान जो हैं ये जाहिलियत की जो बातें हैं आज के जदीद जमाने में तरक्की याफ्ता जमाने में आज भी मुसलमान ऐसे करते हैं। मुझे बचपन में याद है कि पड़ोस में से किसी ने अपनी बीवी से जिहार कर लिया था और मैं छोटी थी लेकिन मुझे इतना याद है कि घर मेरे वालदैन परेशान थे कि पता भी नहीं चले लोगों को अब क्या करें, और पता अल्लाह का कानून है पता तो चलना ही चाहिए, वैसे सजा मिलनी चाहिए कि मर्द जो है जो आज भी औरतों के साथ ऐसा सुलूक करें, तो फिर ये था कि अब क्या करें कि इनकी सुलह करवाई जाए। तो सुलह करवाने के लिए क्या था कि अब मर्द को रुजू करना है, और रुजू करना है तो अब या तो वो एक गुलाम आजाद करे, गुलाम तो मिलते नहीं, या वो 2 माह के मुसलसल रोजे रखे, अगर बीच में रोजा तोड़ देगा फिर से रखना शुरू होगा, फिर रखना होगा, और या फिर यह कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। तो खैर बहरहाल अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ना इसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी मां बना दिया है। सीने में 2 दिल नहीं है, घर के अंदर 2 दिल नहीं है, बीवी बीवी है वो तुम्हारे कहने से मां नहीं बन जाती। तो अगर लोग ऐसा करेंगे तो फिर उनके लिए क्या है, फिर उनके लिए जो है वो जिहार का कानून है जो आगे आपको फिर सूरत मजादला में आप उसकी तफसील जो है वो पढ़ेंगे। तो यहां पर अल्लाह ताला जो बात बताना चाहते हैं वो ये है कि अपनी सोचों की, अपनी फिक्रों की, अपने इरादों की, अपने बातों की इसलाह करो, मोहतात रहो, फजूल बातें जबान से मत निकाला करो, है ना। अब आप देखेंगे कुफार और मुनाफिकीन क्या थे, कुफर करते थे, मुनाफिक क्या करते थे, ईमान लाते थे और इनकार करते थे। तो यहां पे दूसरी बात बता दी कि बीवी जो है मां कह देने से मां नहीं बन जाती। वमा जाला अदिया कुम अबना कुम, और ना ही इसने तुम्हारे अदिया को यानी तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया है। ये तीसरी हकीकत है जो एक आयत में बताई गई है। तीसरी हकीकत जो हमें पता चली वो क्या है कि किसी को अडॉप्ट कर लेने से बेटा उनका नहीं हो जाता और ना ही वो उनके मां बाप बन सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि मां तो कोई और होती थी जो बच्चे को जनती थी, और होता क्या था कि अरब के दस्तूर के मुताबिक फिर उसका मां बाप कोई और बना लिया जाता था, कि उनके यहां अडॉप्शन का रिवाज था, मुतबन्ना उसका रिवाज था। तो अल्लाह ताला ने यहां पे क्या बात कह दी, वमा जाल अदियाकुम अबनाकुम, और इसने तुम्हारे जो मुतबन्ना बेटे हैं उनको तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया है। तो क्या कहा, जो वहां पे इस्लाह नाफिज की गई वो क्या थी कि अरबों के यहां जाहिलियत का ये रिवाज था कि बेटा तो किसी का होता था और बाप वो किसी उसका कोई और होता था। तो क्या बात बताई कि जिस तरह एक धड़ में 2 दिल नहीं हो सकते, एक औरत ऐसा नहीं हो सकता कि बीवी भी हो और मां भी हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी के दो बाप नहीं हो सकते। तो बाप कौन है? जिसके नुतफे से वो पैदा हुआ है। कोई शख्स ना इसका हकीकी बाप बन सकता है और ना ही वो उसका हकीकी बेटा हो सकता है। मुतबन्ना अपने नकली बाप का वारिस नहीं बन सकता। सिर्फ इतना ही कहा है ना कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे जो है वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन सकते। वमा जाला, और नहीं बनाया तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा। तो इससे बहुत से फिर अहकामात निकलते हैं, और उसमें से क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि औलाद किसी की हो और वालदैन उसके कोई और हो, नंबर वन। नंबर दो, विरासत भी उसको नहीं जा सकती। विरासत किसको जाएगी? आप पीछे पढ़ चुकी सूरत निसा में कि विरासत का पूरा कानून है, और जो रहम के रिश्तेदार हैं उन्हीं को जो है वो विरासत जो है मिलती है। अल अकरब फल अकरब का उसूल आपको पता ही है ना, इल्ला ये कि 1/3 जो है उसकी अपनी मर्जी से इंसान तकसीम कर सकता है। अच्छा, तीसरी बात क्या पता चली कि जब बेटा अडॉप्ट किया हुआ है और हकीकी बेटा है ही नहीं, तो मतलब क्या है कि जो अडॉप्ट किया हुआ बेटा है उसकी बीवी से निकाह हो सकता है, उससे निकाह भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि उसकी हैसियत तो नकली बाप की है। और उस जमाने में एक रिवाज यह भी था कि मुतबन्ना की बीवी से निकाह नहीं करते थे वो। तो ये दस्तूर गलत है जो अरब की सोसाइटी में राइज थे। तो आप देख लीजिए कि कहते हैं कि सबसे पहले इस हुक्म की तामील की इस्लाह जो थी कैसे हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर से, कि आपके मुंह बोले बेटे हजरत जैद रजी अल्लाह को जो है वो मक्का की गलियों में, हजरत जैद कब आपके बेटे बने थे? जब आप मक्का में थे। जब मदीना में भी थे तो मक्का में भी थे तो जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, है ना। आपका कोई, आपकी कोई नरीना औलाद तो थी नहीं, जिंदा नहीं रही थी। तो अब क्या हुआ कि आपको हजरत जैद को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत दी जाती थी। जब ये आयत नाजिल हुई, आप सोचें, जब ये आयत नाजिल हुई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जैद बिन हारसा को पहले सब लोग जैद बिन मोहम्मद कहते थे, यह आयत नाजिल होने के बाद उन्हें जैद बिन हारसा कहा जाने लगा। और कहते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद ये बात हराम करार दी गई कि कोई शख्स अपने हकीकी बाप के सिवा किसी और की तरफ अपना नसब मंसूब करे। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। इसी तरह हमें एक और हदीस भी मिलती है कि हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को अपने बाप के सिवा किसी और का बेटा कहा हालांकि वो जानता हो कि वो शख्स इसका बाप नहीं है, इस पर जन्नत हराम है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है। तो आप देख लीजिए कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप तो नहीं था, है ना, बाप तो नहीं था, आपकी तो विलादत ही मौजाना तौर पर हुई। अब कुरान ने ये तो नहीं किया कि किसी और मर्द का नाम उनको दे दिया, बल्कि उनकी निस्बत उनकी वालदा की तरफ होगी, ईसा इब्न मरियम, है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि नाम जो है कहां से दिया जाता है? वल्दियत से दिया जाता है ना। उनका वालिद नहीं थे तो उनको मां की तरफ से नाम दे दिया गया, उनकी नाम से उनको मंसूब किया जाने लगा। अब आप देखें यहां पर जो है एक और बात हमें पता चलती है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये वो बातें हैं जो तुम अपने मुंह से निकाल देते हो। अफवाह, अफवाह जो है इसके क्या मानी है? अफवाह जो है उह फा वो हा से, अफवाह यानी बहुत से मुंह से निकली हुई बात को जो है वो कहा जाता है। तो इसके दरअसल मानी ये है कि ऐसे ही लोग जो हैं अपनी बातें मुंह से निकालते हैं और खुद ही जो है वो किसी का बेटा होता है और किसी का बाप का नाम जो है वो उसको दे देते हैं। तो गोया के यहां पर जो बात बताई जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो ये है कि ऐसी ही जैसे फजूल बातें नहीं होती जो इंसान अपने मुंह से निकालता है, इसी तरह ये एक फजूल बात है कि लोग अपने मुंह से जो है ना ये बातें निकालते हैं। अब आप देखिए कि हजरत जैद बिन हारिसा, जो पहले जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारे जाते थे, जब ये आयत नाजिल हुई तो जैद बिन मोहम्मद कहने की बजाय उनके हकीकी बाप की तरफ निस्बत फौरन कर दी गई। ये बुखारी की रवायत है, उनको जैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। आप सोचे तो सही, रसूल अल्लाह का दिल तो कोई नहीं खराब हुआ, हजरत जैद का दिल भी कोई नहीं खराब हुआ, हालांकि हजरत जैद तो वो थे। आप पीछे एक वाकया मैं आपको सुना चुकी हूँ कि एक मौके पर जब आपके बाप और चचा को पता चल गया कि आप रसूल अल्लाह के पास हैं, वो आए थे आपको लेने के लिए, तो आपने ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा नहीं, बल्कि आपने कहा था कि मामला जैद पर छोड़ देते हैं, जैसे पसंद करें। और हजरत जैद रजी अल्लाह ने जो है वो अपने बाप और चचा की बजाय रसूल अल्लाह के कदमों में जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। तो गोया कि हंसी खुशी से हिकमत के साथ मुनासिब तरीके से एक फैसला हो गया, उन्होंने गुलामी पर इस्लाम को जो है वो तरजीह दी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने बाप और चचा का जाके गुलाम बन जाऊं, गो कि वो आजादी थी, बज़ाहिर वो आजादी थी, लेकिन आपने इस्लाम को तरजीह दी। रसूल अल्लाह से आप इतनी मोहब्बत करते थे और आपके जो तर्ज अमल था, सीरत से इतने मुतासिर थे कि आपने वहीं रहना पसंद किया और आपकी गुलामी में आप रहे। लेकिन आप देखें कि अब जो है कुरान नाजिल हुआ है, मक्का की गलियों में मसलसल एक बात गर्दिश करती रही और मदीना की गलियों में यकसू बदल गई, अब जैद बिन हारिसा के नाम से आप पुकारे जाने लगे। आज की सोसाइटी में भी, जैसे मैं बहरीन में थी तो एक मेरी स्टूडेंट थी, बुजुर्ग से थी और उनके भी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने देवर या जेठ के बच्चे को जो था ना वो पाला हुआ था, और जब ये आयतें उनको बताई और उन्होंने ये पढ़ी, माशाल्लाह बड़ी नेक औरत थी, फौरन फौरन वो काम करती थी, तो उन्होंने जो है वो बच्चे को बताया और पहले तो वो सवाल पूछती रही कि कैसे बताऊं क्या करूं, और फिर जो है उन्होंने इन आयतों को जिंदा कर दिया। तो आज भी ऐसे लोग जो है वो मिलते हैं ना। तो मैं आपकी क्लास में भी एक ऐसी बहन है कि जिन्होंने अपना बेटा किसी को जो है वो दिया है ना, तो वो के वो ये कहती हैं कि उन्होंने जो है वो वल्दियत अपनी ही रखी है और सारी बातें। तो बहरहाल असल बात ये है कि अगर कोई लावारिस है, यतीम है, जैसे मुसलमानों के बच्चे हैं फिलिस्तीन कश्मीर अफगानिस्तान के, तो अगर जो है कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है, जैसे यहाँ पे इकना है, इकना रिलीफ हेल्पिंग हैंड के नाम से, तो वो बहुत से ऐसे बच्चे जो मुसलमानों के हैं तो वो आप यतीमों की कफालत कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मदद तो की जा सकती है, लेकिन अब उनका ये नहीं है कि नसब भी उनको दे दिया जाए, यानी अपनी अपना नाम दे दिया जाए, ये सही नहीं है। उनका जो नाम है उनको बरकरार रखते हुए उनकी मदद करना, उनका ख्याल रखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बेहतरीन घर वो है, बेहतरीन खानदान वो है जिसमें यतीम मिस्कीन गरीब या इस तरह के जो लोग हैं उनकी कफालत जो है की जाए, उनको अडॉप्ट किया जाए। अडॉप्ट करने के माने क्या है कि आप उनकी माली तौर पर मदद कर रहे हैं। अब जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मौजूद हैं, या किसी को अल्लाह ताला ने औलाद दी ही नहीं, तो अल्लाह ताला ज्यादा मेहरबान है ना, अल्लाह तो ज्यादा रहमान और रहीम है, वो चाहता तो वो दे देता, तो अल्लाह से बढ़कर मैं और आप रहीम तो नहीं हो सकते। तो अल्लाह की जो अहकामात हैं, अल्लाह के जो फैसले हैं, इन्हीं में हमारे और आपके लिए खैर है, और अल्लाह के फैसलों पर हम सबको राजी हो जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनकी कोई औलाद नहीं है, जो औलाद वाले हैं, वो अपनी औलाद को खास तौर पर उनकी खिदमत के लिए वक्फ कर सकते हैं, उनके काम करना, उनकी ग्रोसरी करना, और जो भी किया जा सकता है उनकी मदद जो है वो की जा सकती है। बहरहाल तो ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो। इससे एक बात और भी पता चलती है कि बच्चे को बाप के नाम से पुकारा जाना चाहिए, वल्दियत के साथ बच्चे को बाप के नाम से पुकारा जाना चाहिए। ये एक गलत बात है जो कहीं से रवाज पा गई है कि औरत के नाम से बच्चे को पुकारना चाहिए, नहीं, जब कब्रों से भी लोग उठेंगे तो वालिद के नाम से, है ना। तो असल बात क्या है कि आबा का हमें पता चलता है ना, तो आबा कौन है, बाप की तरफ निस्बत जाती है ना, तो बाप के नाम से जो है वो हमें अपनी नाम होना चाहिए, बेटी हो या बेटा हो। कहीं ये इस्लाम में नहीं है वैसे कि शादी हो तो औरत अपना नाम तब्दील करके शोहर का नाम लगा ले, इस्लाम में कहीं भी नहीं है। बाप का नाम, ये आप देख लें अरबों के नाम, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलता कि औरत ने शादी हुई तो अपना नाम तब्दील कर लिया, है ना। तो जैसे बाज औकात, अल्लाह ना करे, बाज औकात ऐसे हालात हो जाते हैं कि तलाक ही हो जाए किसी को, तो अब वो औरत नाम ही बदलती रहेगी, है ना। तो हर नाम इंसान की एक पहचान है और नाम बाप का है, बाप के साथ निस्बत होती है। इसका ये भी नहीं मतलब कि अगर हम अपना नाम जो बाप का नाम है उसको बदलकर जो है वो शोहर का नाम साथ नहीं लगाते तो मियां बीवी से मोहब्बत नहीं है आपस में, या औरत ने शोहर को तस्लीम नहीं किया, या कोई ये गलत सबक है जो बताया जा रहा है। असल में इस्लाम की रूह क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है ना। इस्लाम जो असल हकीकत है ना, उससे इंसान को दूर नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई कागजी कार्रवाई है या पासपोर्ट का मसला है या कोई ऐसी चीज है तो अगर मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी कोई मसला वैसे है नहीं। तो असल बात क्या है कि बच्चों को उनके बाप के नाम के साथ ही पुकारना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो तुम लोग मुंह से निकाल देते हो, वल्लाहु यकूलुल हक्का वहुवा यहदिल सबील, और अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बर हकीकत है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। सबील ऐसा रास्ता जो कुशादा है, खुला है, जिस पर आसानी से जो है वो चला जा सकता हो। तो अब आप देखें कि बहुत सी बातें हैं जो इंसान अपनी जबानों से घड़ लेता है, जैसे किसी को किसी की तरफ निस्बत कह दे दी या किसी को किसी का बेटा कह दिया। तो ये जो गलत बातें हैं ना, इनको मंसूब करना गलत है। इन गलत, जैसे मसलन बाज लोगों को बड़ा शौक होता है कि वो किसी के खानदान में से हों तो उसके साथ निस्बत अपनी करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ये भी बड़ा मशहूर है कि लोग, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो सैयद जादे बन जाए, सैयद हों, सैयद खानदान से हों। वो हैं ही सैयद या नहीं, लेकिन वो अपनी निस्बत सैयद की तरफ करनी शुरू कर देते हैं। तो किसी शख्स को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी निस्बत किसी ऊंची जात की तरफ करे या कि कोई पसंद आए तो उसकी तरफ करे, ये सही नहीं है। तो ये क्या है, ये गलतियां हैं। जैसे जमाना जाहिलियत में, ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, के जमाना जाहिलियत में तुमने कोई निस्बत किसी की तरफ कर दी, बेटा किसी का था किसी और का पुकारा जाता रहा, तो जो कर लिया सो कर लिया, ये सही बात नहीं है। ये तुम्हारी जबाने हैं जिन्होंने ये गलत बातें अपनी मुंह से निकाली हैं। वल्लाहु यकूलुल हक्का वहुवा यहदी सबील, ये अल्लाह है जो हक बात कहता है और सबील की तरफ रहनुमाई करता है। तो आप देख लें, इससे फिर हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है ये बात पसंद करते हैं कि बच्चों को जब पुकारा जाए तो उनके बाप के नाम से पुकारा जाए, और अडॉप्शन नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में हकीकी जो अडॉप्शन, हमारे यहाँ बाज लोग क्या करते हैं, ग्रीन कार्ड की वजह से, आप देखें कि ग्रीन कार्ड कि बच्चा भाई का है, बहन का है, किसी का भी है, उसको यहाँ लाना है और अपना जो है वो उसको वो दे देते हैं, नाम दे देते हैं। अब नसब में जब दे दिया तो नतीजा क्या निकला कि आपने बहुत गलत बात की। अब कानून, कागज, सब नजरों में वो हकीकी बेटे की तरह डील किया जाता है। और इससे ना ये भी होता है कि होता ये, एक बात याद रखें कि जो भी अडॉप्शन होती है, माँ बाप और आपस में वो खानदान वाले तय कर लेते हैं हम बताएंगे किसी को नहीं, पर ऐसा होता नहीं कि किसी को पता ना चले। जो ही बच्चा थोड़ा सा सर निकालता है सोसाइटी को तो पता ही होता है, कहीं ना कहीं से बात उस तक पहुंच जाती है। और उस वक्त बच्चे को बहुत शौक होता है कि ये बच्चे जो है ना, बहुत ही उनकी शख्सियत को, उनकी जैसे उनको ठेस पहुंची कि मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप थे, मेरे लिए रोटी नहीं थी कि ये मुझे अपने पास रखते, है ना, कैसे मेरे माँ बाप थे, इन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा ना। तो और आप देखें कि ये चीज इस मिजाज के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। तो ये चीज मिजाजों के लिए अच्छी भी नहीं है, खानदानों के लिए अच्छी भी नहीं है। इसके अलावा इसमें बहुत से माशर्ती मसाइल भी निकलते हैं। मतलब किसी की बेटी को अगर किसी घर में अब ले लिया गया है तो अब वो घर में वो बच्ची पाली जा रही है, तो अब बाद में महरम ना महरम का मसला बन जाता है। बाज अवकात बेटे को जो पाला जाता है तो महरम ना महरम का, कभी शौहर के लिए कोई ना महरम है, कभी बीवी के लिए कोई ना महरम है। आपके जेहन में आप लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप लिख लें सवाल, इंशाल्लाह फिर इसके बाद में जवाब देते हैं। तो अब आप देखें कि एक तरफ अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये बातें थी फजूल जो तुमने मुंह से निकाल दी, तो अगर हम आज भी ऐसा कर रहे हैं तो जमाने जाहिलियत को दोहरा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, अल्लाह की बात मबनी बर हकीकत है। तीसरी बात क्या है कि अल्लाह ने जो रास्ता बताया है वो सही रास्ता है, सबील कुशादा है, खुला है, सही है, कि अल्लाह ताला की बातें जो हैं उसी में जो है वो हिकमत है।